तो उसमें सर्वाइव करना खास तौर पे एज अ नेफ्यू ऑफ द चीफ सेलेक्टर काफी मुश्किल होता है।
अगर ये 12 टीमें होती तो इनका तो कोई चांस ही नहीं था वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का।
पैसे भी देते हैं और ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते, तो ये हाल है पाकिस्तान में।
इंजमाम ने रिश्तेदारी नहीं निभाई, इमामुल हक ने साबित कर दिया। पाकिस्तानी हॉकी टीम और कितना मायूस करेगी। और इनाम बट आलमी चैंपियन को हरा कर भी अफसरदा। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का शारजा से सलाम। शारजा में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें चौथे वनडे इंटरनेशनल में मध्य मुकाबिल हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम पहले ही तीनों मैचेस जीतकर सीरीज अपने हक में कर चुकी है और अब यकीनन उसकी नजरें अगले दो मैचेस जीतकर क्लीन स्वीप पर लगी होंगी। अबू धाबी में खेला गया तीसरा वनडे इंटरनेशनल नौजवान बैट्समैन इमामुल हक और फास्ट बॉलर हसन अली की शानदार कारकर्दगी की वजह से याद रहेगा। खास तौर पर इमामुल हक, जिन्होंने अपने पहले ही वनडे में सेंचुरी बनाकर अपने सिलेक्शन पर होने वाली तनकीद का जवाब दे दिया। मैंने इमामुल हक से पूछा कि अपने सिलेक्शन पर होने वाली तनकीद से क्या परेशान थे या ये यकीन था कि इस तनकीद का जवाब देने में कामयाब हो जाएंगे।
जी जाहिर है एडिशनल प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे मीडिया जिस तरह है तो उसमें सर्वाइव करना खास तौर पे एज अ नेफ्यू ऑफ द चीफ सेलेक्टर काफ़ी मुश्किल होता है टू बी ऑनेस्ट। इन सब चीज़ों को भूलना और इन चीज़ों को जो है अपने माइंड में ना लेना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने बैट से जो है ऐसी चीज़ें ऐसे कोशिश करूँ कि जिससे जो है लोगों को लोग जो है मुझे सपोर्ट और अप्रिशिएट करें।
मेरा इमामुल हक से अगला सवाल था कि इंजमामुल हक बहुत बड़े बैट्समैन, तो क्या उनसे आपको कुछ सीखने का मौका भी मिला या नहीं?
जब मुझे कोई मुश्किल होती है कभी कभी भी किसी चीज़ में क्रिकेट के बारे में, तो मैं सबसे पहले चाचू के पास ही जाता हूँ, तो वो मुझे हमेशा अलग से टाइम देते हैं NCA में, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बुला के। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मैं उनसे जाके पूछता हूँ, तो वो जाके मुझे बहुत सपोर्ट और मुझे जो है इतना हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहने की कोशिश कहते हैं कि जी बस पॉजिटिव रहो और जो ब्रेव क्रिकेट खेलो, जस्ट प्ले योर गेम द वे यू लाइक इट।
मैंने इमामुल हक से पूछा कि ऐनक लगाकर खेलना खासतौर पर बैटिंग मुश्किल नहीं होती, लेंस क्यों इस्तेमाल नहीं करते?
जी ग्लासेस पहन के क्रिकेट खेलने में मुश्किल तो होती है, लेकिन आई एम वेयरिंग ग्लासेस सिंस द एज ऑफ 6 or 7, सो आई एम वेरी यूज्ड टू इट। लेंस लगाए थे मैंने, लेकिन आई वाज नॉट कंफर्टेबल, तो मैंने इसलिए अब मुझे इतना पता नहीं चलता।
और अब जिक्र पाकिस्तानी हॉकी टीम की मायूसकुन कारकर्दगी का, जो वो ढाका में होने वाले एशिया कप में दिखा रही है। ग्रुप मैचों में उसने कमज़ोर बांग्लादेश के खिलाफ 7 गोल से कामयाबी हासिल की, लेकिन जापान की टीम उसके काबू में ना आ सकी और वो मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। रही बात रिवायती हरीफ भारत से मुकाबले की, तो उसमें पाकिस्तान को 3-1 से शिकस्त हुई। पाकिस्तानी टीम ने अगरचे सुपर 4 में जगह बना ली, लेकिन पहले ही मैच में उसे मलेशिया के हाथों 3-2 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी कोरिया से अगला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा और कल पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी मैच भारत के खिलाफ खेलेगी। मैंने पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक गोलकीपर सलमान अकबर को जहमत दी, जो इस वक्त हॉलैंड में कोचिंग से वाबस्ता हैं। मैंने सलमान अकबर से पूछा कि हमें अब ये वक्त भी देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 7वें नंबर पर आए और किसी दूसरी टीम के नतीजे की बुनियाद पर आलमी कप में जगह बना ले, और फेडरेशन इस पर भी बहुत खुश कि हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया।
ये जो सोच है ये इस मेंटालिटी को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये इतने नारे मारे इन्होंने कि जी हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। क्वालिफाई राउंड में परफॉर्मेंस माशाल्लाह से पाकिस्तान हॉकी टीम ने दिखाई है, 7वें नंबर पर फिनिश किया। अगर ये 12 टीमें होती तो इनका तो कोई चांस ही नहीं था वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का। छोटा सा कोई इवेंट जीत जाते हैं अब कहने लग जाते हैं हम दोबारा आगे वर्ल्ड रैंकिंग में, हम अब जीतने लग गए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अगले टूर्नामेंट में आप कैनर जैसी टीम से 6 गोल खा के आ जाते हैं।
सलमान अकबर से मेरा आखिरी सवाल था कि पाकिस्तान में हॉकी लीग की कमी कितनी शिद्दत से महसूस होती है, जैसा कि दूसरे मुमालिक प्रोफेशनल लीग करा रहे हैं।
बांग्लादेश जैसा मुल्क भी अपने मुल्क में हॉकी की लीग करवाते हैं और आपके पाकिस्तान प्लेयर ही वहाँ पे जाके लीग खेलते हैं अभी भी, तो आप इंडिया को देख लें, हॉकी इंडिया लीग करवाते हैं, उसमें जितना इनके प्लेयर्स को फायदा हुआ, उनकी जितनी ग्रूमिंग हुई है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं, इंटरनेशनल कोचेज आए हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया, उनको प्रोफेशनलिज्म का पता चला है कि किस तरह से आपने अपने आप को कैरी करना है, किस तरह से आपने ट्रेनिंग करनी है, तो ये चीज़ पाकिस्तान में आनी चाहिए। इन्होंने पिछले साल भी अनाउंस किया था और इस साल भी किया, अल्लाह करे इनका फोकस हो के ये बहुत सीरियस हो इस बारे में कि ये लीक करवाएं, और इससे डोमेस्टिक प्लेयर्स को बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी यूथ बड़ी अट्रैक्ट होगी दोबारा हॉकी से, जब वो बड़े बड़े नाम अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देखेंगे अपनी ही कंट्री में, तो इससे पाकिस्तान हॉकी को बहुत फ़ायदा होगा, नो डाउट अबाउट।
पाकिस्तान के मशहूर पहलवान इनाम बट ने गुज़िश्ता दिनों तुर्की में होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप की 90 किलोग्राम कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन ईरानी पहलवान को जेर करके तिलाई तमगा जीत लिया। लेकिन इनाम बट, जो माजी में कॉमनवेल्थ गेम्स समेत मुतादिद बैनुल अक्वामी मुकाबलों में भी तिलाई तमगे जीत चुके हैं, पाकिस्तान में रेसलिंग की हालत ज़ार और पहलवानों के मुस्तकबिल से खासे मायूस हैं। इनाम भट्ट से मैंने पूछा कि आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है, तो क्या वहाँ आपको ट्रेनिंग की वो तमाम सहूलतें मयसर हैं जो किसी भी आलमी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी होती हैं?
वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर एक वो मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया गवर्नमेंट ने, तो वहाँ पर मैं खुद पे करता हूँ, और मेरे साथ जो लड़के जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो तकरीबन 50 लड़के हैं, वो सब के सब पे करते हैं वहाँ पे, मंथली जो है ना फीस लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, और इसके अलावा जो है ना हमारी वहाँ पे 15 दिन ट्रेनिंग होती है, और 15 दिन आज ही वहाँ पे स्क्वैश का मैच है, तो ये जो है ना आपका रेसलिंग बैट नहीं लगेगा, आज वहाँ पे टेबल टेनिस है तो रेसलिंग बैट नहीं लगेगा, आज वहाँ पे वुशु है तो आपका मैट नहीं लगेगा, और वो मैट को रेसलिंग मैट को इकट्ठा करके वो कोने में फेंक देते हैं, और हम 15-15 दिन जो है ना अपनी ट्रेनिंग पैसे भी देते हैं और ट्रेनिंग भी नहीं कर पाते, तो ये हाल है पाकिस्तान में।
भारत इन दिनों 17 साल से कम उम्र के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है, इस आलमी मुकाबले के इनेकाद से भारत को क्या फ़ायदा होगा? दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
कौन जानता था कि भारत कभी अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा, जिसकी टीम साल 1950 में ब्राज़ील में हुए आलमी कप में महज नंगे पांव खेलने की आदत की वजह से शिरकत नहीं कर पाई थी। मेज़बान भारत की टीम तो पहले ही दौर में बाहर हो चुकी है, लेकिन इस टीम को आने वाले वक्त की उम्मीद मानते हैं। साल 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के अहम खिलाड़ी रहे तुलसी दास बालाराम।
कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा, ये तमाम अभी चल रहा है, ये बच्चों लोग भी सुनेगा, उनका भी दिमाग में बैठ जाएगा, शायद फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा इसको।
कभी अंडर 17 वर्ल्ड कप से ही पुर्तगाल के लुइस फिगो, स्पेन के सेस फेब्रिगास और इकेर कैसियास, जर्मनी के टॉमी क्रूज और ब्राजील के नेमार और रोनाल्डिन्हो स्टार बनकर निकले थे।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।